Om Shanti. Welcome to the session on prevention of stroke. तो आज हम अगले करीब आध घंटे में बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में. स्ट्रोक क्या है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, और इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या साइंटिफिक गाइडलाइंस हैं जिससे हम इसको रोक पाए, और क्या हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करके स्ट्रोक को रोक पा रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी हमें स्ट्रोक को रोकने में क्या मदद कर सकती है. जैसा कि हम सब जानते हैं, स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है. तो देखते हैं व्हाट इज स्ट्रोक. स्ट्रोक क्यों होता है? जब भी खून का दौरा ब्रेन के किसी हिस्से में बंद हो जाता है तो स्ट्रोक हो जाता है. इसके दो मुख्य कारण हैं. या तो ब्लड वेसल में कोई क्लॉट बन जाता है तो इसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या वो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं. तो किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक से क्या लक्षण होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से में खून का दौरा बंद हुआ है. तो आइए देखते हैं कि हम इस स्ट्रोक को कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या लक्षण हैं जिससे हमें पता चले कि ये स्ट्रोक हो सकता है. उसके लिए सिंपल एक्रोनिम हम याद कर सकते हैं, बी फास्ट. बी का मतलब बैलेंस. अगर कोई व्यक्ति अपना बैलेंस खो देता है, उसके सर में तेज दर्द होता है या चक्कर आते हैं तो ये स्ट्रोक हो सकता है. E stands for eyes. आंखों की रोशनी जा सकती है, धुंधला दिखने लगे या एक के दो दिखने लगे. फेस का मतलब चेहरे में कुछ परिवर्तन आ जाना. अगर हम व्यक्ति को स्माइल करने के लिए कहते हैं तो उसका चेहरा एक तरफ से नीचे हो जाता है. और आर्म्स stands for weakness of the arm or leg. एक हाथ या पैर में कमजोरी आ जाना. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक में हेमिप्लीजिया हो जाता है, यानी कि एक साइड का हाथ और एक साइड का पैर काम करना बंद कर देता है. और अगर ये दाहिनी तरफ होता है तो इसके साथ एस मतलब स्पीच भी डिफेक्टिव हो जाती है. या तो व्यक्ति बोल नहीं पाता, अगर बोल पाता है तो उसकी आवाज क्लियर नहीं, या हम उसकी बात नहीं समझ पाते या वो हमारी बात नहीं समझ पाता. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम इज ब्रेन. जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेन के सेल्स न्यूरॉन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं. जब भी कभी खून का दौरा बंद होता है तो कुछ ही सेकेंड्स और मिनट्स में मिलियंस ऑफ सेल्स स्टार्ट डाइंग. तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? उसको रोकने के लिए हमारे पास एक क्लॉट बस्टिंग दवा है जो कि 4.5 घंटे तक दी जा सकती है, सिम्टम्स शुरू होने के बाद पहले 4.5 घंटे के अंदर, तभी वो इफेक्टिव होती है. जितना जल्दी देते हैं उतना उसका असर अच्छा होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज. तो हमें ऐसे व्यक्ति को, अगर हम स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे ऐसे हॉस्पिटल में भेजना बहुत जरूरी है जहां पर ये दवा अवेलेबल है और एक्यूट स्ट्रोक को ट्रीट करने का सब फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका हमें पहले से पता होना चाहिए. अगर हम व्यक्ति को एक छोटे हॉस्पिटल में पास में कहीं भेज देंगे जहां सीटी स्कैन और इन दवा की उपलब्धि नहीं है, तो हम कीमती समय खो देंगे जो कि बहुत जरूरी है. एवरी सेकेंड काउंट्स. तो मिनी स्ट्रोक क्या है? मिनी स्ट्रोक के लक्षण भी स्ट्रोक की तरह ही होते हैं, सिर्फ उसमें इतना अंतर है कि मिनी स्ट्रोक में जो भी सिम्टम होते हैं वो कुछ ही घंटों में ठीक हो जाते हैं, मैक्सिमम 24 घंटे में. अक्सर 1 घंटे में ये सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं. तो बहुत से लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, मेडिकल एडवाइस नहीं लेते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, और यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर भी इसको नजरअंदाज कर सकता है. तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है. हमने देखा कि जो रिसर्च से हमें पता चला कि जिन व्यक्तियों को ये मिनी स्ट्रोक होता है उनको अगले 2 दिन में 5% लोगों में और अगले 3 महीने में 10% लोगों में फुल फ्लेज स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, तो उन स्ट्रोक को रोकने के लिए हमें इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम उस पर काम कर सकें और एक पूरा स्ट्रोक, एक घातक बीमारी को होने से रोक सकें। व्हाई स्ट्रोक मैटर्स, मुझे स्ट्रोक के बारे में क्यों पता होना चाहिए? पहले लोग समझते थे कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, मगर ऐसा नहीं है। स्ट्रोक किसी को भी कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी, एडल्ट्स में भी, यंग लोगों में भी। और आज के दिन दुनिया में सबसे बड़ा विकलांगता का कारण ये स्ट्रोक है और सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। हर 2 सेकंड में विश्व में एक व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है और हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति की स्ट्रोक से मृत्यु हो रही है। स्ट्रोक किसी को होता है तो वो सिर्फ एक मरीज को इफेक्ट नहीं करता। अगर हार्ट अटैक होता है तो व्यक्ति दिखने में नॉर्मल दिखता है, उसके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं तो वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, सोसाइटी में मूव कर सकता है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसी कमी आ जाती है, या हाथ पैर में कमजोरी है, या बोलने में दिक्कत है, या देखने में दिक्कत है। इस तरह की कमी आ जाने की वजह से 30% तक लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या तो उन्हें परिवार के लोगों की मदद लेनी पड़ती है, या कुछ ऐसे भी कमी रह जाती है जिसके कारण वो कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं बिता सकते। वो हमेशा के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए जरूर कोई उपाय सोचना होगा। और जो अभी वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन की तरफ से हमें आंकड़े मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि हर 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। यानी कि विश्व के 25% पॉपुलेशन को कभी ना कभी स्ट्रोक होने की संभावना है। तो लेट्स ट्राई टू प्रिवेंट इट। तो स्ट्रोक को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें साइंस ने ये बताया है कि कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इंटरस्ट्रोक स्टडी, एक बहुत फेमस स्टडी जो कि विश्व के 32 देशों में की गई, और ये पता चला कि कुल मिलाकर 10 ऐसे कारण हैं, अगर हम उन्हें मैनेज कर सकें तो हम 90% स्ट्रोक को रोक सकते हैं। और उनमें से 4 मुख्य कारण हैं जिनको WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है। वो सिर्फ स्ट्रोक से ही नहीं, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी और भी बहुत बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर एक वो चीज होती है जो हमारे कोई ऐसी आदत है, हमारा कोई स्वभाव संस्कार है, जिसकी वजह से हमारा किसी बीमारी के लिए रिस्क बढ़ जाता है। और ये जो 4 रिस्क फैक्टर हैं, ये हमारे स्वभाव संस्कार से, हमारी लाइफस्टाइल से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। उनमें से पहला कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। आज हम साइंस के साधनों पर इतना निर्भर हो गए हैं कि हमें ज्यादा फिजिकल एग्जर्शन करने की जरूरत नहीं रहती। हम घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, लिफ्ट से चलते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। फियर इज द फिजिकल एक्टिविटी, हार्डली एनी। इस सिडेंट्री लाइफस्टाइल ने ये बताया है, रिसर्च से हमें पता चला है कि ये बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को बढ़ा सकता है, जिनमें से एक स्ट्रोक भी है। और रिसर्च से ये भी पता चला है कि अगर हम इसको चेंज कर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं तो हम बहुत सी बीमारियों को रोक सकते हैं और स्ट्रोक को भी कम कर सकते हैं। अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं तो हम मेंटली भी एक्टिव रहते हैं। तो रिकमेंडेड एक्सरसाइज हमारे लिए क्या है? कम से कम 150 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग जैसी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, या 75 मिनट विग्रस एक्सरसाइज जिसमें जॉगिंग हाइकिंग टाइप की एक्सरसाइज हो, कम से कम हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज और 75 मिनट विग्रस इंटेंसिटी एक्सरसाइज हमें करनी बहुत जरूरी है ताकि हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकें। अगली चीज आती है यूज ऑफ टबैको, चाहे वो स्मोकिंग है या नॉन स्मोकिंग। किसी भी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल स्ट्रोक के रिस्क को डबल कर देता है। इतना ही नहीं, जो सेकेंड हैंड स्मोक है वो भी उतना ही खतरनाक है जितना कि वो व्यक्ति रिस्क पे है जो कि स्मोक कर रहा है। उसके परिवार के लोग, खास तौर पर महिलाएं, छोटे बच्चे जो उनके साथ रहते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं, उनको भी उतना ही रिस्क है। और अच्छी बात ये है कि अगर हम तंबाकू का सेवन छोड़ देते हैं तो स्ट्रोक का रिस्क 2 से 4 साल में खत्म हो जाता है, यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन के मुताबिक आ जाता है। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट के बारे में आज लोग काफी जागरूक हो चुके हैं और सब जानते हैं कि जो डाइट अनहेल्दी है वो है शुगर्स, लो कैलोरी स्वीटनर्स। बहुत लोग शुगर के मरीज लो कैलोरी स्वीटनर्स यूज करते हैं स्वीटनिंग के लिए, पर वो सेफ नहीं है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, रिफाइंड ग्रेन्स, ट्रांस फैट्स, सोडियम सॉल्ट, जो नमक हम टेबल सॉल्ट की तरह यूज करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी में इतना सोडियम नॉर्मल डाइट से चला जाता है कि हमें ऊपर से सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं होती। और रेड मीट, प्रोसेस मीट, दे आर नॉट हेल्दी फूड्स। जो रिकमेंडेड हेल्दी डाइट है वो है प्लांट बेस्ड मेडिटेरियन टाइप ऑफ डाइट, जो कि वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में रिच हो। इट शुड बी रिच इन होल ग्रेन्स, नट एंड हाई फाइबर वेजिटेबल्स। तो ये तो बात हुई भोजन की फिजिकल क्वालिटीज की। प्लांट सोर्स से जो हम भोजन बनाते हैं या एनिमल सोर्स से बनाते हैं, उन दोनों में क्या अंतर हो सकता है, उसके बारे में रिसर्च हुई है। और अभी जुलाई 2020 में ही एक पब्लिकेशन आई है जामा में, वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, जिसमें 16 साल तक फॉलो अप करने में पता चला है। स्टडी यूएस में की गई है जिसमें बोथ मेन एंड वुमेन वर इन्वॉल्व। ये देखा गया कि ओवरऑल मोर्टेलिटी में क्या फर्क पड़ता है और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस के बारे में जो डेथ होती है उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इट वॉज फाउंड दैट हाई प्लांट प्रोटीन इनटेक वॉज एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ ओवरऑल टोटल मोर्टेलिटी एंड दिस एसोसिएशन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर रिस्क फैक्टर्स। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वॉज कि रिप्लेसमेंट ऑफ एग प्रोटीन एंड रेड मीट प्रोटीन विद प्लांट प्रोटीन वॉज एसोसिएटेड विद मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोटेक्शन इन ओवरऑल मोर्टेलिटी। द फिगर्स आर रियली हाई, 24% एंड 21% लो रिस्क फॉर मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली फॉर एग रिप्लेसमेंट एंड 13% एंड 15% फॉर मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली फॉर रेड मीट रिप्लेसमेंट। सो दिस स्टडी एंड मेनी मोर स्टडीज हैव क्लियरली शोन दैट डाइटरी मॉडिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन सोर्स कैन प्रमोट हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। देयर इज अनदर एविडेंस बियॉन्ड द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ फूड। फूड प्रोवाइड्स अस कैलोरीज एंड इन एडिशन वी ऑल नो दैट फूड गिव्स अस सम एनर्जी विच इज मेटाफिजिकल, वी कांट मेजर, वी कांट सी। द एनिमल फूड इज फिल्ड विद नेगेटिव इमोशंस ऑफ हेट्रेड, एंगर, एंड इट इज अ लो एनर्जी फूड। ऑन द अदर हैंड प्लांट फूड विच इज कुक्ड इन लव फील्ड, प्योर वाइब्रेशन एंड काम एटमोसफियर, दैट इज ए हाई एनर्जी फूड एंड स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड मेंटली सूदिंग। हम सब ने ये अनुभव किया है कि जो भोजन हम प्रसाद की तरह लेते हैं, लंगर में खाते हैं, उससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है बजाय उसके कि जो हम खाना एक होटल में जाकर खाते हैं। इसीलिए कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। इतना ही नहीं, हमारे विचारों का, हमारे भोजन पे क्या असर होता है, दैट हैज बीन नाइसली शोन बाय स्टडीज ऑन वाटर बाय डॉक्टर इमोटो फ्रॉम जापान. उन्होंने ये बताया कि वाटर में स्ट्रक्चर है जो एक क्रिस्टल्स के रूप में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में फ्रीजिंग पे हम देख सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर बदलता है अगर पानी को हम एक्सपोज करते हैं ह्यूमन थॉट्स, साउंड और इंटेंशन से, वर्ड से, इवन लेबलिंग हैज ए इफेक्ट. ये पाया गया कि अगर टैप वाटर को हम वैसे देखते हैं तो जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो अच्छे नहीं होते. ऑन द अदर हैंड, इफ द वाटर इज एक्सपोज टू प्रेयर, गुड फीलिंग्स, गुड लोगोज, गुड वर्ड्स लाइक लव, ग्रेटिट्यूड, देन द क्रिस्टल मेड आर वेरी नाइस. इफ द वाटर इज एक्सपोज टू वर्ड्स लाइक यू आर अगली, यू आर फूल, यू आर डर्टी, हेट्रेड इज रिटन ऑन द बॉटल, देन द क्रिस्टल मेड्स आर नॉट गुड. वी ऑल नो दैट अवर बॉडी हैज 2/3 ऑफ वॉटर, सो ऑब्वियसली द क्वालिटीज ऑफ वॉटर कैन अफेक्ट अवर हेल्थ. इट सीम्स दैट वॉटर रिमेम्बर्स एंड लेटर कन्वेज द इंफॉर्मेशन. ये भी हमने देखा है, पुराने समय में हमारे ऋषि लोग पानी का ही इस्तेमाल करते थे. आज भी हम पूजा में, आचमन में पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पानी एक शक्ति को कन्वे करता है और एनर्जी को ये ट्रांसफॉर्म करता है. बहुत जरूरी है ये जानना कि हम जो भोजन कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो हाई एनर्जी फूड है या लो एनर्जी फूड है. अगली जो रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस. आज देखते हैं हम हर व्यक्ति स्ट्रेस से घिरा हुआ है, चाहे वो बच्चा है चाहे बुजुर्ग है. स्ट्रेस ओवरलोड बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रेस एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए. अगर वो लंबे समय तक चलता है, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, एंड इन बिटवीन देयर इज नो सेटिस्फेक्ट्री रिटर्न टू द लेवल ऑफ एनर्जी एंड देयर इज नो रिलैक्सेशन, इट इवेंचुअली लीड्स टू हेल्थ कोलैप्स. हाउ स्ट्रेस वर्क्स, इट इज एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस लाइक ग्रीफ, पेन, हेट्रेड, डिस्पेयर, सैडनेस, फियर, जेलसी, गिव्स राइज टू डिप्रेशन, एंड दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ हार्मोन्स लाइक नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, विच इंक्रीज अवर ब्लड प्रेशर, अवर हार्ट रेट, एंड लीड टू डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक. वी कैन सी दैट देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन अवर रिस्क बिहेवियर्स, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, द यूज ऑफ टबैको, एल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी फूड एंड स्ट्रेस. दीज फैक्टर्स लीड टू सम फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स इन टू अवर बॉडी. दे ब्रिंग आउट सम चेंजेस इन अवर मेटाबॉलिज्म विच कॉज इंक्रीज इन अवर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रोल एंड समटाइम्स ओबेसिटी, जिसके चलते हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती हैं. यहां ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए. तो ये बहुत क्लियर है कि हमारे जो हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं, हमारी आदतें हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जिससे हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी होता है, वही इन बीमारियों को बढ़ावा देने में रिस्पॉन्सिबल है, और हमें इन बीमारियों को रोकने के लिए इसी रिस्क फैक्टर पे, यानी लाइफस्टाइल पे ही काम करना होगा. तो देखते हैं डिजीजेस क्या हैं. हाई ब्लड प्रेशर, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल डॉक्यूमेंटेड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, जो कि स्ट्रोक के रिस्क को 4 से 6 गुना बढ़ा देता है. और ये भी स्टडीज से बहुत क्लियर है कि अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है स्ट्रोक को रोकने की. मगर सैड पार्ट ऑफ इट इज कि 26% विश्व के पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि 29% तक होने की संभावना है बाय 2025. लेकिन 40% से भी कम लोगों को पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है. क्योंकि ब्लड प्रेशर के अक्सर कोई सिम्टम नहीं होते, और जब मरीज को हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, किडनी फेलियर या आंख की रोशनी जाती है तब पहली बार पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। और ये स्टडी से पता चला है कि ब्लड प्रेशर डायग्नोज होने के बाद भी लगभग 30% लोग ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, और उनमें से भी केवल 10% ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ फिर प्रॉब्लम आती है हमारी आदत और हमारा स्वभाव। ब्लड प्रेशर रीडिंग नॉर्मल आते ही अक्सर लोग दवाई बंद कर देते हैं, कंप्लायंस पुअर है, हम अपनी डाइट एक्सरसाइज को चेंज नहीं कर पाते, तो उसके चलते हमारा ये रिस्क बना रहता है। ओबेसिटी इटसेल्फ इज ए डिजीज, और ग्लोबली ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। ओबेसिटी का पता कैसे चलता है? वो हम BMI, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जो हाइट और वेट से कैलकुलेट किया जा सकता है। और नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो स्ट्रोक, हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। और वेस्ट टू हिप रेशियो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड रिकमेंडेड इज दैट वेस्ट टू हिप रेशियो फॉर मेन शुड बी लेस देन 0.9 एंड फॉर वोमेन इट शुड बी लेस देन 0.85। जो व्यक्ति ओबेसिटी के शिकार हैं, अगर वो अपना वेट कंट्रोल करते हैं तो उसमें बहुत सारे फायदे हैं। 5% भी अगर वजन कम होता है तो उससे ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज लेवल्स भी कम होते हैं, और हम रिस्क से बच सकते हैं। शुगर, डायबिटीज, ये अपने आप में एक एपिडेमिक हो गया है। आज विश्व में 52% मेन और 48% वोमेन में डायबिटीज पाया गया है, और डायबिटीज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है जो स्ट्रोक को दुगना कर देता है। और ये भी देखा गया है कि शुगर के 20% लोगों की डेथ स्ट्रोक से होती है। इतना ही नहीं, जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको रिस्क है, बॉर्डरलाइन डायबिटीज हैं, उनको भी उतना ही रिस्क है स्ट्रोक का। आउटकम ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, हमने देखा कि हमारे को बहुत सी गाइडलाइंस मिली हैं स्ट्रोक को प्रिवेंट करने की, जिससे ये हमें पता चला है कि कॉर्नर स्टोन ऑफ रिस्क रिडक्शन फॉर स्ट्रोक एंड अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। 2011 में जब पहली बार अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से प्राइमरी स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए गाइडलाइंस इश्यू हुई थी, तो चेयर ऑफ दैट कमिटी डॉक्टर गोल्डस्टीन गेव ए वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कि हम दवाइयों से या और भी किसी भी इंटरवेंशन से स्ट्रोक को उतना प्रिवेंट नहीं कर सकते जितना हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन से, क्योंकि स्टडीज से हमें ये बहुत क्लियरली पता चला है कि जिन व्यक्तियों का लाइफस्टाइल हेल्दी है उनमें स्ट्रोक 80% कम होता है। ये यूके में स्टडीज हुई थी जो कि इन गाइडलाइंस को इश्यू करने से पहले स्टडी की गई थी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन रिमेन्स द कॉर्नर स्टोन, एंड विद दिस गाइडलाइंस आर वी एबल टू प्रिवेंट स्ट्रोक? क्या स्ट्रोक के आंकड़े कुछ कम हुए हैं? नहीं। वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन ने ये डिक्लेयर किया है कि स्ट्रोक प्रिवेंशन नीड्स ओवरहॉल। जो भी हम कोशिश कर रहे हैं अब तक पिछले 2 से 2.5 दशकों में, वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन, वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन, इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, WHO, सभी इस पर कार्य कर रहे हैं, और विश्व में सभी देशों की गवर्नमेंट्स भी इस पर कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम जो अचीव करना चाहिए वो गोल नहीं कर पा रहे। स्ट्रोक का प्रेवलेंस जो 1 in 6 था, वो पिछले 10 सालों में बढ़कर 1 in 4 हो गया है। तो अब क्या किया जाए? What should we do? Where the overhauling is required? हमने बात की थी डाइट की। डाइट इज नॉट ओनली what we eat, इट इज also what we watch, what we listen to, what we read, and the people we hang around. So we have to be very careful कि हमारे अंदर बोथ फिजिकली और इमोशनली क्या जा रहा है। दोनों हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड बीइंग। हमने ह्यूमन पे बॉडी पे बहुत फोकस किया है और बहुत काम हो रहा है, लेकिन बीइंग के बारे में हम जागरूक नहीं, हम अपनी मनोस्थिति के बारे में अलर्ट नहीं हुए। हम अच्छा भोजन चुन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल खरीद लेते हैं, स्पीडोमीटर ले आते हैं, रोज ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में क्या चल रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव नेगेटिव थिंकिंग, किसी के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, डर, टेंशन, चिंता, ये सब चीजें हमारे बॉडी में वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, हीलिंग पावर को कम करते हैं और हमारे माइंड को भी वीक करते हैं। आज दया, करुणा, सहयोग, प्रेम दिखाई नहीं देता और इनसे होने वाले जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, एंडोर्फिन्स, वो कम हो जाते हैं और हम वो खुशी, वो आनंद, वो रिलैक्सेशन फील नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है? व्हाट ओवरऑल कैन वी डू इन ऑर्डर टू हैव हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि हमें मालूम है हमारा मेन गोल है। हम वो हर व्यक्ति को अवेयरनेस चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जो हाई रिस्क बिहेवियर्स हैं वही हमारी भी इन बीमारियों का रूट कॉज हैं, और उसके लिए हमको हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी है और इस पर काम करना है। वी मस्ट प्रोवाइड हाई एनर्जी फूड बोथ टू अवर बॉडी एज वेल एज अवर सोल और द बीइंग। द बीइंग इज वेरी ब्यूटिफुल, इट हैज गॉट ब्यूटिफुल वैल्यूज, द क्वालिटीज, पावर, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज एंड ब्लिस, बट वी डोंट सी देम अराउंड बिकॉज दे हैव बिकम सबमर्ज्ड। एवरी वन ऑफ अस हैज ऑल दीज वैल्यूज, लेकिन वो हमारे अंदर इतनी सबमर्ज हो गई हैं कि हम उनको लगभग भूल गए हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू रिचार्ज अवर सेल्फ, रिज्यूविनेट दीज वैल्यूज एंड इमर्ज दोज वैल्यूज इन टू अवर डे टू डे लाइफ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो हर एक वैल्यू है उसका हमारी एक एक बॉडी सिस्टम से बहुत गहरा संबंध है। नॉलेज इज एसोसिएटेड टू वर्किंग ऑफ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्योरिटी टू अवर सेंस ऑर्गन्स, इम्यून सिस्टम, पीस टू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लव टू अवर हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हैप्पीनेस टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लिस टू एंडोक्राइन सिस्टम एंड पावर्स टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति में जिस वैल्यू की कमी होती है उसका वही सिस्टम कमजोर हो जाता है और उसमें बीमारी होने का शंका रहती है और वो रिस्क उस सिस्टम के लिए ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है? इमोशनल इंजीनियरिंग। वी नो अवर ब्रेन हैज लॉट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमें अपनी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में चेंज करना है। लव, ग्रेटिट्यूड, एंजॉयमेंट, कॉन्फिडेंस, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, ये सब चीजें जब हमारे जीवन में आ जाएंगी, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, तो वी विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ हार्मोन्स लाइक डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, और हम अपने जीवन में बहुत सारी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको दूर कर सकेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव इज वी हैव टू बी द मास्टर ऑफ अवर माइंड एंड बॉडी। इट इज क्लियर दैट बाय प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव लाइफस्टाइल्स व्हेन वी कैन एम्पावर अवर सेल्फ टू अचीव दिस गोल, एंड दिस विल हेल्प नॉट ओनली इन प्रिवेंटिंग स्ट्रोक बट मेनी अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। जरा सोचिए, एक राजा जिसका मंत्री और उसका सेनापति और उसके कर्मचारी उसके सहयोगी नहीं हैं, उसका साथ नहीं दे रहे, तो वो कैसे अपना राज चलाएगा? कुछ ऐसी ही अवस्था आज मुझ बीइंग की भी हो गई है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। मैं आत्मा जो राजा हूं इस शरीर का और मेरा मन मंत्री और मेरी बुद्धि मेरा सेनापति और मेरे सेंस ऑर्गन्स जो मेरे कर्मचारी हैं जो मेरे संस्कार हैं वो अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं इस शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाती। तो हमें क्या करना है, मुझ राजा को इन सबको मंत्री को सेनापति को संस्कारों को प्रेम से अपने साथ लेके चलना है और इनको कंट्रोल में भी रखना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम मेडिटेशन से स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से कर सकते हैं। वी कैन डू सेल्फ हीलिंग बाय मेडिटेशन। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगले करीब 3-4 मिनट में हम इसकी एक रिहर्सल करेंगे और फिर आप इसकी प्रैक्टिस बाद में घर पे भी कर सकते हैं। आप सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, दो लंबे गहरे सांस लेंगे, एक बार और जो मैं आपको विचार दे रही हूं उसके बारे में सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और उसको फील करेंगे। मैं एक प्योर पीसफुल कॉन्शियस एनर्जी हूं जो इस शरीर को चला रही हूं। मैं इस शरीर की मालिक हूं। मैं सुप्रीम पावर हाउस से पावरफुल पीसफुल लवफुल वाइब्रेशंस ले रही हूं और ये वाइब्रेशंस मैं अपने शरीर के हर अंग तक पहुंचा रही हूं। ये पीसफुल लवफुल पावरफुल वाइब्रेशंस मेरे शरीर के एक एक अंग तक जा रहे हैं। महसूस कीजिए, माय माइंड इज फुल ऑफ प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स, माय हार्ट इज फिल्ड विद लव कंपैशन, माय लंग्स आर फुल ऑफ पीस, माय डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंजॉयिंग हैप्पीनेस जॉय, माय मसल्स एंड बोन्स आर फुल ऑफ पावर, माय सेंस ऑर्गन्स, my eyes, ears, nose, tongue, skin, all are sending pure vibrations to my body and the world around. I am enjoying the state of bliss with healthy mind and healthy body. I am thankful to my body in which I am residing. I am thankful to all the elements of nature, earth, space, air, water, fire. I am thankful to the supreme power, the almighty authority who is giving me this pure powerful, loveful vibrations, and I'm able to enjoy healthy mind and healthy body. Thank you. Thanks for being with us. I'll request that all of you should practice this type of meditation whenever you have time, and you can also learn Raj Yoga meditation from the local nearby Brahma Kumari Center. Wish you all a very, very happy and healthy life. Thank you.
Om Shanti. Healing the healer. Healing kisko kahenge? जब हम किसी बीमार को सेहत देने में सहयोग देते हैं, चाहे डॉक्टर है, नर्स है, उनके आसपास सारे जो उनको सहयोग देने वाले हैं, वो सब उस हीलिंग में सहयोग दे रहे हैं, चाहे उनके परिवार के मेंबर्स हैं, वो भी तो हीलिंग का एक हिस्सा ही है, सो ये सब हीलिंग कर रहे हैं, चाहे हम बीमार को हेल्थ देने की हीलिंग करें, चाहे हम किसी दुखी परेशान को सुख शांति देने की हीलिंग करें, तो चाहे वो हीलिंग शरीर की है, चाहे वो हीलिंग मन की है, हीलिंग हम सब करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कभी ना कभी किसी की हीलिंग ना की हो, और अगर और किसी की नहीं तो अपनी हीलिंग तो की है, क्योंकि जब खुद का मन परेशान होता है तो उस मन को ठीक करना होता है, जब खुद का शरीर बीमार होता है तो उसको भी जो हम वाइब्रेशंस भेजते हैं उसको हीलिंग कहते हैं, कि हम अपने ही शरीर को हील कर रहे हैं अपने सोचने के तरीके से। तो हीलिंग हम सब करते हैं, लेकिन कभी कभी हम हीलिंग को सिर्फ बाह्य रूप से देख लेते हैं, कि हीलिंग मतलब अच्छा खाना खिलाना, एक्सरसाइज करवाना, एक डॉक्टर एक सिस्टर के लिए हीलिंग मतलब ऑपरेशन करना, प्रोसीजर करना, दवाई देना समय पर, सब कुछ एक्यूरेट, विच मीन्स टेकिंग केयर एकदम एक्यूरेट। लेकिन हीलिंग दो लेवल पर होती है, एक हीलिंग है जो आउटसाइड हो रही है, आउटसाइड कि आउटसाइड जो चीज ठीक नहीं है उसको ठीक करना, वो है हीलिंग। लेकिन साथ साथ हीलिंग मन की भी होती है, मन की स्थिति, जिसका शरीर बीमार हो उनका मन खुश हो, शक्तिशाली हो, ये चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जब शरीर बीमार होता है तो मन भी परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। अगर बहुत दिन हम अपने नॉर्मल जीवन पर नहीं आ पाते तो मन हताश सा हो जाता है। तो शरीर को स्वास्थ्य देने के साथ साथ मन को भी सुकून की जरूरत होती है। तो अब एक व्यक्ति को देखते हैं कि सपोज मेरा शरीर बीमार है और उस कारण से मेरा मन भी परेशान है, उदास है, सो आई एम द वन हु नीड्स द हीलिंग, मुझे हीलिंग की आवश्यकता है। अब मेरे आसपास सभी जो है बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं मेरी हीलिंग करने के लिए, तो वो डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, मेरा अपना परिवार है, संबंधी हैं, दोस्त हैं, सारे जो हैं वो मेरी हीलिंग कर रहे हैं। लेकिन एक है हीलिंग बाहर की चीजों का ध्यान रखना। कभी कभी बाहर सब कुछ परफेक्ट करते हुए मेरे आसपास जो लोग होंगे वो कभी कभी अगर चिंता क्रिएट कर लेते हैं, कभी कभी वो परेशान हो जाते हैं, कभी कभी वो हताश हो जाते हैं, कभी कभी वो अपने जीवन की किसी और परिस्थिति के बारे में सोचकर टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी वो किसी के व्यवहार को देखकर गुस्सा भी कर देते हैं। ये सब मेरे आसपास के लोगों के मन की स्थिति है, जो बहुत प्यार से और बहुत जिम्मेवारी से मेरी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरी हीलिंग के साथ साथ उनकी अपनी भी तो जीवन है ना, तो उनके जीवन में बातें आती हैं, और जब उनके जीवन में बातें आती हैं, तो वो कभी कभी परेशान, नाराज, उदास, स्ट्रेस्ड, बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पर। अब मेरी हीलिंग हो रही है, लेकिन मेरे आसपास के लोग अगर कभी परेशान, उदास या नाराज हो जाते हैं, तो वो सारी वाइब्रेशंस भी मेरी तरफ आती है। उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है, उनकी इंटेंशंस है कि मेरा शरीर जल्दी से ठीक हो जाए, उनकी इंटेंशन ये भी है कि मेरा मन खुश रहे, पावरफुल रहे। वो हमेशा मुझे कहते हैं, तुम खुश रहो, तुम चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो वो सिर्फ मेरे शरीर की हीलिंग नहीं कर रहे, वो मेरे मन को भी मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वो मुझे औरों के एक्सपीरियंसेस सुना रहे हैं कि कैसे दूसरे कितनी जल्दी ठीक हो गए, वो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी बातों को लेकर कभी कभी जो चिंता, परेशानी और दुख क्रिएट करते हैं, वो वाइब्रेशंस उनके साथ चलते हैं। So I am the one who needs healing and everyone around me is the healer with the pure intention of healing me. लेकिन जब वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा इलाज कर रहे हैं, साथ साथ उनकी जो वाइब्रेशन है, उनका जो ऑरा है, वो उनके साथ साथ चलता है। We all have an energy field. हमारी energy field हमारी first level of communication होती है। हम लोगों से बहुत प्यार से बात करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम बाहर लोगों को सब कुछ परफेक्ट करके देते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो है हमारी एनर्जी फील्ड, वाइब्रेशन टू वाइब्रेशन कनेक्शन, एनर्जी फील्ड। तो अब विजुअलाइज करते हैं कि मेरे आसपास दो लोग हैं, एक हीलर है हॉस्पिटल में, एक मेरे फैमिली मेंबर है। ये दो लोग मेरे पास खड़े हैं, दोनों सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों अंदर मन में थोड़ा अपनी किसी बात से परेशान हैं, दुखी हैं, नाराज हैं। तो उनकी जो ऑरा है, उनकी जो एनर्जी फील्ड है, वो भी मेरे पास खड़ी है। अब इस सीन को अपने सामने लाइएगा। ये दोनों मेरे हीलर्स हैं, मेरा शरीर बीमार है, मेरा मन दुखी है, ये दोनों मेरे नजदीक खड़े हैं। एक एनर्जी फील्ड मेरी अपनी है और दो एनर्जी फील्ड्स मेरे नजदीक खड़ी हुई हैं। मेरी जो एनर्जी फील्ड है वो वैसे ही अभी अपनी बेस्ट वाइब्रेशन पर नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिन से हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ, मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, मुझे अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, मुझे धन कम पड़ रहा है, बहुत सारी बातें हैं मेरे तो मन पर जो चल रही हैं। तो मेरी जो एनर्जी फील्ड है वो थोड़ी सी डाउन है, ऑलरेडी डाउन है। अब मेरे पास जो ये दो लोग खड़े हैं, एक मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर या नर्स है और एक मेरा फैमिली मेंबर है, दोनों अपनी किसी बात से टेंशन में है, तो उनकी जो एनर्जी फील्ड है वो भी थोड़ी सी डाउन है। मेरे जितनी डाउन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डाउन है। अब इसको एक फिगर देते हैं, जस्ट ताकि हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। अब मेरी एनर्जी फील्ड काफी डाउन है, क्योंकि मेरा शरीर भी बहुत दर्द में है, सब कुछ अनकंफर्टेबल सा है और मन भी उदास है। तो मेरी एनर्जी फील्ड लेट्स से 50 पर है, होनी 100 पर चाहिए, लेकिन मेरी एनर्जी फील्ड 50 पर है सपोज। और ये जो दोनों हीलर्स हैं, जो बहुत प्यार से मेरा ध्यान रख रहे हैं, इनकी एनर्जी फील्ड लेट्स से 70 पर है। तो ये दोनों अपनी 70 की वाइब्रेशन से मेरे नजदीक खड़े हैं और मेरी वाइब्रेशन 50 या उससे भी डाउन हुई हुई है। अब अगर हम इस तरह से तीन लोग, तीन एनर्जी फील्ड्स 10-15 मिनट भी, 5-10 मिनट भी ऐसे खड़े हैं, तो दो चीजें होने वाली हैं। एक, उनकी एनर्जी फील्ड मुझ पर प्रभाव डालेगी और दूसरा, मेरी एनर्जी फील्ड उन पर प्रभाव डालेगी, उनकी वाइब्रेशंस मुझे मिलेंगी और मेरी वाइब्रेशंस उनको मिलेंगी। ये होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। हम बात करें ना करें, हम एक दूसरे के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन हमारी वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ सारा दिन एक्सचेंज हो रही है। अब क्योंकि मैं डाउन हूं 40 या 50 पर हूं, और ये भी कोई बहुत ज्यादा अप नहीं है, ये भी 70 पर ही है, तो देयर इज बिग चांसेस कि जो मेरी लोअर वाली वाइब्रेशन है वो इन पर थोड़ा सा असर करना शुरू कर देती है, थोड़ा सा। इनको वो पता नहीं चलेगा, वो दिखाई नहीं देता, और ना ही वो एकदम से महसूस हो जाता है कि हमें तो बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन मिली है। कई बार हमें महसूस भी होता है, हम कहते हैं आई डिड नॉट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम दैट पर्सन। सो वाइब्स मतलब वो व्यक्ति अपने ही जीवन में अपनी बातों से परेशान उदास है, तो हमें बहुत अच्छी वाइब्स नहीं मिलती है उनसे। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनको मेरी वाइब्स पता चल रही है, लेकिन उनको पता चले या ना पता चले, मेरी वाइब्रेशंस तो रेडिएट कर ही रही है। दे आर रीचिंग आउट टू देम। अब पहले ये मुझे मिलते हैं, 10 मिनट के बाद ये किसी और को मिलते हैं, उसके 10 मिनट के बाद ये किसी और को मिलते हैं, और ये अगर अपनी 60-70 की वाइब्रेशंस पे चल रहे हैं, और वो मेरे जैसे 40-50 की वाइब्रेशंस पे या उससे भी कम की वाइब्रेशंस पे 5-6 लोगों को भी मिल लें, तो धीरे धीरे इनकी जो 70 की वाइब्रेशन थी वो 70 न रहकर 68 या 65 तक पहुंच जाएगी। और फिर ये फिर भी उसको रोज एनर्जाइज ना करें, तो फिर हर रोज वो मेरे जैसे कितने लोगों को मिल रहे हैं जो बीमार है, परेशान है, और हमारी वाइब्रेशंस का असर इस हीलर पर पड़ता जा रहा है। तो वो हीलर की वाइब्रेशन एक अपनी मन की स्थिति की वजह से थोड़ी डाउन है, और दूसरा जिनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं उसकी वाइब्रेशन की वजह से भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और इसलिए सबको सुख देते हुए, सबको सेहत देते हुए, सबका कल्याण करते हुए, लेकिन खुद की वाइब्रेशन का अगर ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर दूसरों की वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब करते 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 वो हीलर का अपना मन स्ट्रेस को नॉर्मल समझकर अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू कर लेता है। बाहर से नहीं दिखाई देता, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन वाइब्रेशंस को पहुंच गई है, तो वो स्ट्रेस को, लो फीलिंग को, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने को, किसी को छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाने को, हर एक का अलग अलग होगा। वाइब्रेशन लो हो, दिखती वो अलग अलग रूप में है। जैसे इम्यूनिटी लो हो शरीर की, तो बीमारी अलग अलग रूप से आती है, किसी को कोई बीमारी तो किसी को कोई बीमारी, लेकिन मूल कारण तो होता है कि शरीर इम्यूनिटी लो थी। इसी तरह जब हमारी इमोशनल इम्यूनिटी लो होती है तो वो दिखती अलग अलग तरह से है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलेगा कि इमोशनल इम्यूनिटी हमारी लो है। आज हम सब अपनी फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ हम अपनी इमोशनल इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या हम सचमुच एक परफेक्ट फिजिकल इम्यूनिटी अचीव कर पाएंगे? क्योंकि मन का असर शरीर पर तो पड़ता ही है। तो इमोशनल इम्यूनिटी लो होना वो अलग अलग रूप में दिखाई देता है। किसी के अंदर वो गुस्से के रूप में दिखाई देता है, अग्रेशन के रूप में दिखाई देता है, किसी के अंदर वो ईगो के रूप में दिखाई देता है, कोई बहुत कंट्रोलिंग होता है, कोई बहुत डोमिनेटिंग होता है, कोई मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, कोई जेलेसी क्रिएट करता है, कोई हर्ट क्रिएट करता है, कोई इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस करता है, तो कोई डर फियर एक्सपीरियंस करता है, कोई टेंशन वरी एक्सपीरियंस करता है, कोई कॉम्पिटिशन रेस में ही अपने आप को देखता रहता है, कोई दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता रहता है, कोई शिकायत बहुत करते हैं। तो अलग 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 रूप से ये इमोशनल बीमारियां, ये फिजिकल नहीं है, ये मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है, ये एक इमोशनल हेल्थ इश्यू है कि hurt, anger, rejection, manipulation, domination, controlling, criticizing, comparing, competing, बातों को भूल न पाना, forgive न कर पाना, ये सब emotional बीमारी है. Emotional health क्या है? Gratitude, compassion, cooperation, peace, stability, calm, patience, easy, acceptance, letting go, forgetting the past, forgiveness. ये सब high emotional immunity है. ये emotional health है. अब जब हम औरों की tension, चिंता, गुस्से के vibrations में बहुत ज्यादा रोज रहते हैं और अगर हम अपनी वाइब्रेशंस को एनर्जाइज करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो दूसरों की वाइब्रेशंस का असर हमारी वाइब्रेशन पर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहेंगे इमोशनल इन्फेक्शन. जैसे एक हीलर सारा दिन हॉस्पिटल में कितने लोगों के संग में आते हैं, लेकिन वो ध्यान कितना रखते हैं कि ग्लव्स जरूर पहनने हैं, हाथ जरूर धोना है. अब आजकल के समय में तो किट वो पहनना है किसी से मिलने से पहले. लेकिन ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि फिजिकली हम दूसरे की इन्फेक्शन से बचे रहें, क्योंकि हमारा रोल है सबको ठीक करना. लेकिन सबको ठीक करते हुए अपने शरीर का तो ध्यान रखना होगा. तो गलती से भी नहीं भूलते अपने आप को फिजिकली प्रोटेक्ट करना. सिमिलरली इमोशनली हम सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इमोशनली अपने आप को सेफ नहीं रखेंगे, तो इतने लोगों को सारा दिन मिलते हुए जो कि अपनी बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, जिनका माइंड भी बहुत हैप्पी नहीं है शायद, और जिनकी बॉडी भी हेल्दी नहीं है, और एक ऐसे एनवायरमेंट में सारा दिन सेवा करते हुए जहां क्राइसिस है, जहां डिजीज है, जहां डेथ है, जहां एक्सीडेंट्स है, जहां ट्रॉमा है, एनवायरमेंट. सो हीलर जो हीलर है वो सिर्फ पेशेंट के वाइब्रेशन से नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा, वो पेशेंट के वाइब्रेशन से, पेशेंट की फैमिली के वाइब्रेशन से, हॉस्पिटल के वाइब्रेशन से, अपने आसपास के लोगों के वाइब्रेशन से, बिकॉज इट इज अ हाई क्राइसिस रीजन. इट्स अ हाई क्राइसिस रीजन. तो इसलिए ये जो इमोशनल इन्फेक्शन है, मतलब दूसरों का दुख, दर्द, चिंता, पीड़ा, ये अब्सॉर्ब हो जाती है हमारी इमोशनल फील्ड के अंदर, हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर. ये पता नहीं चलेगा. फिजिकल बीमारी तुरंत पता चलती है और हमें पता चलता है, हाँ आज ना मैं इनसे मिला था ना, मुझे लगता है ये मुझे वहां से आई है चीज. तो फिजिकल बीमारी बहुत इजी होती है, खुद में भी पहले सिम्टम से ही पता चल जाती है, ध्यान कैसे रखना है वो भी पता है, और अगर कैच कर ली तो ये भी पता होता है आज किससे मिले थे उससे मैंने ये फिजिकल बीमारी कैच की है. इमोशनल बीमारी विच मीन्स ये लो वाइब्रेशंस, ये सिम्टम के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये लो वाइब्रेशंस हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं. ये ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिखाई देगा, ओ मैं तो कल तक बहुत शांत था, आज मैं सडनली इतना जोर जोर से गुस्सा कर रहा हूं, तो मैंने किसी का गुस्सा कंज्यूम कर लिया है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. इट हैपन्स वेरी 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 ग्रेजुअली, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन जो इतनी हाई थी, लेट्स से 80 थी, 90 थी, लेकिन रोज 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 हाई प्रेशर सिचुएशंस एंड नॉट द बेस्ट ऑफ वाइब्रेशन, तो वो 90 से 88, 85, 70, 60 ऐसे बहुत धीरे होती है, बहुत धीरे होती है. और जब ये धीरे धीरे होती है तो ये हमारे अंदर अलग अलग रूप से दिखाई देती है. थोड़ा सा चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा डर आने लग जाता है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लेवल कम हो जाता है, थोड़ा कभी कभी रूखे हो जाते हैं. हॉस्पिटल में सबके साथ अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी घर आके इरिटेट हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें इतनी धीरे हमारे व्यक्तित्व में आती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि इसका सोर्स क्या है, ये कहां से आ रही है, वी डोंट कम टू नो दैट ऑल्सो, ये हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये हो रहा है, ये सारा दिन हो रहा है। लेकिन हम क्या कह देते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है। उसको नॉर्मल कहकर हम उसको ठीक करने का कोई पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। यहां तक हम कहते हैं बर्नआउट भी हो जाता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। दूसरे कहते हैं तो नॉर्मल है ना, लुक एट द काइंड ऑफ वर्क, ना स्लीप साइकिल ठीक है, ना लाइफस्टाइल रूटीन सेट होती है। तो हम उसका जिम्मेवार किसी ना किसी बात को ठहराकर अपने ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेकर उसको नॉर्मल एक्सेप्ट करके, उसको एज अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं, जीना शुरू कर देते हैं। तो लो वाइब्रेशंस जो हीलर ने कंज्यूम की, वो हीलर की वाइब्रेशन को डाउन लेकर आता है। लेकिन अब वो हीलर दोनों मेरे पास खड़े हुए हैं, आई एम द पेशेंट, एक तो मेरे फैमिली मेंबर है लेकिन वो भी तो हीलर है ना। अब उनकी जो लो वाइब्रेशन है वो मेरी लो वाइब्रेशन पर असर करके मुझे और लो कर देते हैं। तो पहले मैं 40 पर थी, लेकिन ये दोनों जब मेरे साथ खड़े रहे 15 मिनट, इनकी एनर्जी मुझे मिली, तो मैं 40 से 38 पर चले गए, 38 से 35 पर चले गए। ये मेरे मन की हीलिंग को स्लो डाउन करेगा, और अगर मेरे मन की हीलिंग स्लो डाउन हो गई तो मेरे शरीर की हीलिंग भी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी डीप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि एनवायरमेंट और पेशेंट्स की वाइब्रेशन का असर हीलर पर, और फिर हीलर के वाइब्रेशन का असर उसकी हीलिंग पर, मतलब पेशेंट्स की हीलिंग पर। ये सब एक कंटिन्यूस एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है, और इस सब को हमने नॉर्मल कह दिया, जो सबको इतना सुख देते हैं, सबकी जीवन, कितनों का तो भाग्य बदल देते हैं, कितने परिवारों का भाग्य बदल देते हैं। उनको सबका ध्यान रखते हुए सिर्फ एक छोटी सी चीज, अपना ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा। कभी भी ये न कहिएगा कि मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है। That's not being fair. That's cheating yourself. ये हमारी जिम्मेवारी है कि दूसरों का ध्यान रखने से पहले हमें अपना ध्यान रखना होगा। फ्लाइट में जब ऑक्सीजन मास्क नीचे आता है तो इंस्ट्रक्शन तो सबसे पहले यही सिखाई गई थी ना कि पुट द मास्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। Put the mask on yourself first. And आप भी फिजिकली तो वो करते ही हैं। अगर आपने किसी बीमार को देखना है, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल हो, आप अपना मास्क, अपने ग्लव्स पहनना आप तो नहीं भूलते हैं। इसी तरह अपना यहाँ ध्यान रखना, इसको एक प्रायोरिटी बनाना है, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है। This is a moral responsibility towards yourself. ये आपकी आपके अपने प्रति जिम्मेवारी है, ये आपकी आपके परिवार के प्रति जिम्मेवारी है, ये आपकी आपके कलीग्स, आपके साथ जो डॉक्टर्स नर्सेस सेवा करते हैं उनके प्रति आपकी जिम्मेवारी है। दैट यू आर वाइब्रेटिंग एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड ये आपके प्रोफेशन के प्रति, आपके पेशेंट्स के लिए ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप उनके हीलर हैं। The healer will have to be at the highest vibration for healing to happen accurate and healing to happen fast. Man ki healing. Sharir ki healing to perfect hi hoti hai. Lekin man ki healing ho jaye, uske liye healer ki vibration bhi. To phir kya hoga? It will become a very different energy exchange. Ke jo main wo patient hoon, मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, लेकिन मेरे आसपास जो दोनों हीलर्स खड़े हैं इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। अब इनकी वाइब्रेशन के संग में आने से मेरे मन को भी शक्ति मिलती है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी एन ऑपोजिट एनर्जी एक्सचेंज, कि इनके वाइब्रेशन के संग में आने से मेरे मन को शक्ति मिलती है, तो जो 40 पर थी वाइब्रेशन वो 50 पर पहुंच जाती है। जो 50 पर पहुंच जाती है तो वो वाइब्रेशन इनको भी मिलती है, तो इनको डिप्लीट करने के बजाय उनकी भी शक्ति बढ़ जाती है. सो वी गो इनटू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक जना चाहिए जिसकी इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसकी इमोशनल फिटनेस हाई होनी चाहिए, जिसकी इमोशनल वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए. एक जना चाहिए, विच मीन्स हर घर में एक चाहिए, हर टीम में एक चाहिए, आपके हॉस्पिटल में आपका जो यूनिट है उसमें एक चाहिए. इट हैज टू बिगिन विद वन, द पावर ऑफ वन. प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन. एक जना बहुत कमाल क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इट हैज टू बिगिन विद वन. कई बार हम सोचते हैं मेरे करने से क्या होगा, मेरे आसपास तो इतनी टेंशन और चिंता है सारा दिन, मेरे करने से क्या होगा. अगर सारी बैटरीज भी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो, एक चार्ज्ड बैटरी मिल जाए तो काफियों को चार्ज करते थे, और फिर वो थोड़ा 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 चार्ज करते 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 फिर वो एक दूसरे को चार्ज करते 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 सारी बैटरीज चार्ज होनी शुरू हो जाएंगी. लेकिन एक को तो होना होगा. So let's take responsibility that I am going to be that one. I am going to be that one jo khud ko energize karke apni vibration se sabki healing karenge. Chahe wo healthcare professional hai, chahe wo family member hai, chahe wo ek organization, ek team ka hissa hai, hum sab logon ki vibrations ko influence karte hain. तो जो हीलिंग हम अपनी करेंगे वो हीलिंग सिर्फ अपनी न रहकर बहुतों पर प्रभाव डालकर उनकी भी हीलिंग करती है. और जो हीलिंग हम अपनी वाइब्रेशन की करेंगे वो सिर्फ लोगों पर प्रभाव नहीं डालती, वो प्रकृति नेचर पर प्रभाव डालती है, वो सृष्टि प्लैनेट पर प्रभाव डालती है. आर वाइब्रेशंस हील द नेचर, आर वाइब्रेशंस हील द वर्ल्ड. कितनों की हीलिंग हो जाएगी सिर्फ अगर मैं एक अपनी हीलिंग करनी शुरू कर दू. आई वन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई बिकम रिस्पॉन्सिबल, आई बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू हील मेनी 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 अदर माइंड्स, बॉडीज, नेचर एंड द वर्ल्ड. क्योंकि हमारे मन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एनर्जी फील्ड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है. कितनी छोटी सी चीज और सेवा कितनी सारी, इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ेगा. जब हम फिजिकली अपना ध्यान रखते हैं ना तो सिर्फ हमारे ही शरीर को बेनिफिट मिलता है. अगर आप अच्छी डाइट खाएंगे, आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो सिर्फ आपका ही शरीर ठीक हो सकता है. उससे आपके वो करने से किसी और का शरीर हेल्दी नहीं हो सकता है. लेकिन जब आप अपने मन का ध्यान रखेंगे तो बहुतों के मन पर प्रभाव पड़ेगा. सो इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी सी है लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. इसलिए अपने मन का ध्यान रखना, इसको प्रायोरिटी बना लेते हैं. लेट्स मेक इट अ प्रायोरिटी, नॉट एन ऑप्शन कि जब टाइम मिलेगा तो, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट. हम कहते हैं ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे जो पेशेंट्स हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हम सबके पास एक बहुत लंबी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट है. लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम होना चाहिए वो अपना खुद का होना चाहिए. दिस इज नॉट सेल्फिश, दिस इज सेल्फ केयर. सेल्फ केयर सो दैट I can provide the best care to everyone around me. Self-care. So responsibility list mein sabse pehla naam apna hona chahiye ke mera, mere man aur sharir ke prati zimmewari hai, responsibility hai. Responsibility shabd ko hi dekh lete hain. Responsibility. Responsibility. Response kya hai? Har situation mein, har scene mein. मेरी थॉट्स, मेरा वर्ड, मेरा बिहेवियर, आई रिस्पॉन्ड टू द सीन. अभी मेरे सामने कोई बात आए आई हैव टू थिंक, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू बिहेव। ये जो तीन चीजें हम करते हैं हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, ये जो तीन चीजें हम करते हैं, दिस इज आवर रिस्पॉन्स। हमारी सोच, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, ये हमारा रिस्पॉन्स है, ये एनर्जी है जो हमसे निकलकर बाहर जाने वाली है, ये हमारा कर्म है। दिस इज आवर रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स अबिलिटी मतलब द अबिलिटी टू क्रिएट द राइट रिस्पॉन्स इन एवरी सिचुएशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द अबिलिटी, अब अगर हम कहें बात ही ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, सिचुएशन ही ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस नहीं कर रहे, हम ये याद नहीं रख रहे कि माय अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इज माय चॉइस। हम कह रहे हैं वो थे ही ऐसे इसलिए मुझे ऐसा हो गया। दिस इज ऑपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब चाहे कोई भी बात हो बाहर, my ability to respond right, that is my responsibility, ये मेरी जिम्मेवारी है। और इसी से हमारी vibrations high रहती है, इसी से हमारा emotional immunity system high रहेगा। बातें तो सारा दिन में बहुत आनी है, आनी ही है, situations हमारे अनुसार नहीं हो सकती, crisis सामने खड़ा है तो हमारे सामने बातें तो बहुत आनी है, लोग भी अलग अलग तरह से काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, बहुत बातें आनी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी तैयारी करनी है। इसकी तैयारी हम सबसे पहले सुबह कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम अपने सारा दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक कर लें, क्योंकि टिपिकली हमें पता होती है कि कौन सी बातें हमारे सामने आती रहती हैं। मतलब कोई केस आएगा, कोई पेशेंट आएगा, वो तो डिफरेंट होगा आज, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हमने इनके साथ काम करना है, हमने इनके साथ रहते हैं, ये इनका संस्कार है, ये इनका काम करने का तरीका है। हमें ये भी पता है आज मेरे सामने पूरे दिन में ये वाली सर्जरीज लाइंड अप है। हमें ये भी पता है कि आज मुझे इन चार पेशेंट्स को देखना है। हमें मेजोरिटी चीजें अपने दिन की पता होती हैं। हमें ये भी पता है कि हमें रास्ते में ट्रैफिक में कितना टाइम लगने वाला है। तो लगभग अगर देखा जाए तो कम से कम 50-60% चीजें, शायद उससे भी ज्यादा, हमें आज के दिन की पता होती है कि आज मेरे सामने कौन कौन से सीन आने वाले हैं, ये हमें पता होता है। बहुत कम बातें होती हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। हमने कहा मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन। हम कहते हैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दैट समथिंग लाइक दिस विल कम, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इसको 50-50, वैसे 50-50 होगा नहीं, वैसे तो 70-30, 80-20 उस रेशियो में चलता है, क्योंकि मेजोरिटी चीजें हमें पता होती हैं। तो अगर हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमें पता है कि ये आने वाला है, ये होने वाला है, इन लोगों के साथ काम करना है, इन लोगों के साथ रहना है, ये बातें तो आज दिन में आने वाली है, वी नो दैट 50-60% ऑफ आर लाइफ टूडे, आज के दिन में मेरे सामने क्या क्या आने वाला है। अगर हम उन सीन्स में भी जो हमें पता है कौन से आने वाले हैं, अगर हम उसमें अपने रिस्पॉन्स का ध्यान रखें, जैसे जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, अब वो तो रोज सेम है ना, तो हमें उनके संस्कार पता है। लेकिन अगर हम अपने आप को चेक करें, कितने सालों से हम उनके साथ हैं, लेकिन आज भी हम उनके वो ही काम करने के तरीके पर, वो ही व्यवहार पर, वो ही संस्कार पर हम आज भी रॉन्ग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम आज भी नाराज हो जाते हैं, हम आज भी इरिटेट हो रहे हैं, हम आज भी उदास हो जाते हैं, हम आज भी उनको शिकायत करते रहते हैं, उनको हम आज भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वो स्टिमुलस तो सेम है, कुछ स्टिमुलस, कुछ सिचुएशन आएंगी जो डिफरेंट होंगी, लेकिन कम से कम जो सेम सिचुएशन है, जो सेम स्टिमुलस है, उसके लिए तो अपनी तैयारी कर लेते हैं ना, वो तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा माइंड सही रिस्पॉन्स क्रिएट करना सीख जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा माइंड सही रिस्पॉन्स करना सीख जाएगा. जैसे फिजिकली, फिजिकली आपके सामने मेजोरिटी बातें सारा दिन सेम है कि आपको पता है कि आपके ओपीडी में ये आएंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा. आपको ट्रेनिंग है कि आप ग्लव्स ऐसे पहनेंगे, हाथ ऐसे धोएंगे. यू ट्रेन्ड एंड यू आर डूइंग इट एवरी सिंगल डे. तो ये आपकी वो वाली स्टिम्यूलस है जो आपको पता है कि आनी ही है, लेकिन क्योंकि आप उसमें रोज एक्यूरेटली इतना अच्छे तरह से राइट रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर अगर आपके सामने अचानक एक बहुत बड़ा क्रिटिकल केस आ जाता है, अचानक आता है एंड बहुत 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 क्रिटिकल होता है, लेकिन आप गलती से भी रॉन्ग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मतलब आप वो जो पहनना है, जो प्रोटेक्शन करनी है, वो आप नहीं भूलते हैं. क्यों? क्योंकि रोज की नॉर्मल सिचुएशंस में उस तरह से रिस्पॉन्ड करने से वो आपकी हैबिट बन गई है, वो आपका संस्कार बन गया है. और जो चीज आपका संस्कार, आपकी हैबिट, आपकी प्रोग्रामिंग बन जाएगी, फिर अचानक से बहुत सी बड़ी सी बात आएगी, लेकिन आपका संस्कार पहले वर्क करेगा. संस्कार हैज गॉन इनटू एन ऑटोमेटिक मोड. वो संस्कार आप कभी भी गलती से भी गलत तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. फिजिकल रिस्पॉन्स, क्या आपने जो करना था वो आपने नहीं किया. सिमिलरली इमोशनल रिस्पॉन्स की प्रेपरेशन हम उन सिचुएशंस में उन लोगों के बिहेवियर्स के साथ करें जो हमारे सामने रोज आने वाले हैं, रोज आ रहे हैं इतने सालों से. लेकिन अगर हम नहीं करें तो आप सोचो, जो इतने सालों से जिनके साथ हम रह रहे थे उनके साथ भी अभी भी हम रिएक्ट कर रहे हैं, अभी भी हम रॉन्ग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अभी भी हम एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं उनके बारे में उस तरह से सोचकर, उनके साथ वैसा व्यवहार करके. तो जो अपनी नॉर्मल सिचुएशंस हैं उनमें भी अगर एनर्जी घटाई, तो फिर अचानक वाली जो सिचुएशन आएगी उसमें राइट रिस्पॉन्स करना ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो नॉर्मल डेली सिचुएशन में सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे. तो दिस इज इमोशनल हेल्थ, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्डिंग राइट इन एवरी सिचुएशन, ये हमारी जिम्मेवारी है. तो हमें सुबह क्या करना है? हमारा सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो कम से कम आधा घंटा, आइडियली तो एक घंटा रखना चाहिए सबको, लेकिन कम से कम आधा घंटा अपनी वाइब्रेशंस को एनर्जाइज करने के लिए रखिए. मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. शुरू शुरू में टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद तो वो नेचुरल हो जाएगा. तो कम से कम आधा घंटा सुबह. सबसे पहली चीज मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन क्रिएट्स एन एक्सपीरियंस, एंड वो एक्सपीरियंस यहां एक इंप्रेशन की तरह रिकॉर्ड हो जाता है. एक अफर्मेशन, अफर्मेशन मीन्स, सपोज हम एक अफर्मेशन लेते हैं कि आज सारा दिन में जो भी बातें आएंगी, जो भी सिचुएशंस आएंगी, आई एम अ काम स्टेबल सोल, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल. ये हमारी अफर्मेशन है, ये हमारा संकल्प है. आई कोऑपरेट विद ईच वन, आई एम कंपैशनेट. कुछ एक संकल्प रोज ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेते, रोज एक लेते हैं. वो अफर्मेशन लेकर हम उसको विजुअलाइज करते हैं. सपोज हमने अफर्मेशन लिया कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल. अब सारा दिन में जो भी बातें आने वाली हैं, उनको देख लीजिए अपने सामने यहां पर. ऐसा नहीं कि उस बातों में ही हम फंस जाएंगे या उन बातों को याद करना शुरू कर देंगे, लेकिन रफली मोटा मोटा हमें कुछ कुछ बातें पता होती हैं सारा दिन की, उनको सुबह थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं. स्कैन मतलब हम एक प्रोग्रामिंग यहां क्रिएट कर रहे हैं. ये वाली बात आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी. हम अपने माइंड को सिखा रहे हैं कि इसमें हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है. तो हम उस टाइम विजुअलाइज करेंगे कि ये वाला व्यक्ति आज मिलने वाला है. मालूम है मुझे पता है कि उनका संस्कार मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं अपने आप को विजुअलाइज कर लो कि उनके साथ बात करते हुए, उनके साथ काम करते हुए, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा व्यवहार, मेरा बात करने का तरीका वो ऐसे होगा। इसको प्रिपेयर करें, आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप आज की सिचुएशन में कैसे होने वाले हैं। यू आर प्रिपेयरिंग योर माइंड फॉर दैट इन द मॉर्निंग। तो पहले संकल्प क्रिएट किया, फिर उसकी विजुअलाइजेशन की। कुछ क्षणों के लिए उस संकल्प की विजुअलाइजेशन को देखते रहिएगा। वो विजुअलाइजेशन फीलिंग एक एक्सपीरियंस सा लगेगा, आपको फील होगा कि हाँ वो आएंगे, आई विल बी लाइक दिस। आपको वो एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, जैसे आप अभी एक्सपीरियंस कीजिए। यू कैन डू इट राइट नाउ। आप एक्सपीरियंस कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। सामने लेकर आइए वो सीन कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं। रेत को फील कीजिए, उन लहरों को फील कीजिए। फील द वॉटर टचिंग योर फीट। ये हम संकल्प कर रहे हैं और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, और इसको अगर हम थोड़ी देर करते रहते हैं ऐसा, हम उसको फील करना शुरू कर देंगे और ये इंप्रेशन यहां रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आप एक सीन देखिए, आप पहाड़ों में हैं, सूर्य अस्त हो रहा है, सनसेट को देखिए और पहाड़ों पर बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाइए। हवा को महसूस कीजिए, प्रकृति को महसूस कीजिए और वो सनसेट की वाइब्रेशंस को फील कीजिए। आप उस चित्र को देख पा रहे हैं एंड जो अभी आप देख रहे हैं वो आपके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। अब तीसरे सीन पर चलते हैं। आप अपनी कार में हैं, ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। अब उस सीन को देखिए, सुबह का 8 बजे का समय है, आसपास बहुत ट्रैफिक है। अपने को अपनी गाड़ी में देखिए, चारों तरफ ट्रैफिक है, हिल ही नहीं रहा है, कुछ हुआ है शायद सड़क पर, जैम है। आसपास की एनर्जीज को फील कीजिए, उस सीन को देखिए एंड फिर अपने आप को देखिए वहां पर। आई एम अ पीसफुल बींग, आई एम अ पावरफुल बींग। मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय अपने मन को स्थिर रखना। देखिए अपने आप को उस कार में बैठे, फोन कर रहे हैं, जिसको मैसेज देना है वो दे रहे हैं, सर्जरी लाइंड अप थी उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो करना है, लेकिन एनर्जी, वाइब्रेशंस, बात करने का तरीका पीसफुल, इन कंट्रोल। चौथे सीन पर आते हैं। आप हॉस्पिटल में हैं, आप ऑलरेडी लेट हैं। जैसे आप एंटर करते हैं, दो लोग आपकी तरफ भागते हुए आते हैं। पेशेंट की फैमिली भी भागते हुए आपके पास आती है, परेशान है, जोर जोर से कुछ कहना शुरू करते हैं। आया अ पीसफुल सोल, पावरफुल सोल। उनको समझाने से पहले मेरी वाइब्रेशन उनको हील कर रही है, क्योंकि ये वाइब्रेशन हम घर से और रास्ते में ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल में लेकर आए हैं. सी दिस सीन राइट नाउ, लेट इट गेट इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड. वो नाराज है मेरे से, वो डरे हुए हैं, वो परेशान है बहुत, उन्हें ये नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो मेरी पीसफुल वाइब्रेशन के संग में आ गए हैं. उनका मन उस वाइब्रेशन के प्रभाव में आकर वो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं मुझे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं. आई द पावरफुल सोल एम हीलिंग देम. मेरी वाइब्रेशंस उनके मन को हील कर रही हैं. मेरी वाइब्रेशंस मेरे साथ साथ चल रही हैं. सी योरसेल्फ वॉकिंग इन द कॉरिडोर ऑफ द हॉस्पिटल. एक एक कमरे को आप पास कर रहे हैं और जैसे जैसे आप चल रहे हैं आपके साथ आपकी एनर्जी फील्ड चलती है. वो एनर्जी फील्ड एक रिपल इफेक्ट है, उसकी तरंगे चारों तरफ फैल रहे हैं. I am a radiator of peace and power. My vibrations are healing the energy of the hospital. ऐसे करते हुए अब आप उस ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं, चाहे बहुत ही डिफिकल्ट, शायद अब तक का आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस आपका इंतजार कर रहा है. सब कुछ सेट है, सब रेडी है, आपकी असिस्टेंट्स रेडी है, इक्विपमेंट्स रेडी है, पेशेंट एनेस्थीशिया ले चुका है, सब कुछ रेडी है. अब आप वहां जाते हैं और एक मिनट के लिए साइलेंस में खड़े होते हैं. ये दृश्य को देखिएगा, भी विजुअलाइज दिस. यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द डे और सब कुछ सेट है. अब अपने माइंड को भी हाईएस्ट वाइब्रेशन पर ले जाते हैं. आई एम गॉड्स एंजल. मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं. परमात्मा की शक्तियां मुझे यूज करके आज मुझसे ये सेवा कराएंगी. सफलता इसमें निश्चित है. ये सर्जरी एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगी. इसको आप सुबह विजुअलाइज कर रहे हैं एंड फिर आप अपने आप को देखिए उस सर्जरी में. सब कुछ हो रहा है, बाहर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है. कुछ सोचा नहीं था कि ऐसे बॉडी रिएक्ट करेगी, वो भी हो जाता है, लेकिन मन स्थिर है, शांत है, बिल्कुल इन कंट्रोल. रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर सीन में सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. आप वापस इधर आ जाइए. ये हमने अभी क्या किया, हमने सुबह के समय बैठकर अपने दिन की तैयारी की. हम सारी चीजों की तैयारी करते हैं. हमें अगर कुछ बहुत मुश्किल केस आज हैंडल करना है, हम दूसरे डॉक्टर्स से भी बात कर लेते हैं. हम कभी कुछ स्टडी भी कर लेते हैं कि शायद कोई और बात आई हो, कहीं दुनिया में किसी और ने इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज की हो, मैं उसके एक्सपीरियंस से भी सीख लूं, विच इज ऑल्सो सो सो इम्पोर्टेंट. एंड आप सब दिन रात वो मेहनत करते हैं, लेकिन सब कुछ बाहर मेहनत कर रहे हैं साथ साथ कुछ क्षणों के लिए. ये बहुत कम टाइम लगने वाला है इसका, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, दैट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल. सबसे पहला प्रभाव आपके खुद के मन पर, खुद के शरीर पर, क्योंकि ये करने से आपने अपने आप की वाइब्रेशंस को बहुत ऊंचा उठाया है। अब आसपास की वाइब्रेशन आपको नीचे नहीं खींच सकती, आप आसपास की वाइब्रेशन को ऊपर उठाने वाले बन गए हैं। बिकॉज यू आर अ रेडिएटर ऑफ पीस एंड पावर, यू हैव क्रिएटेड दैट। तो ये करने से आप सारा दिन अपने आसपास की वाइब्रेशन से बचे रहेंगे और आप आसपास की वाइब्रेशन को भी बढ़ाते जाएंगे। तो सुबह का समय कम से कम 10-15 मिनट हमें मेडिटेशन के लिए रखने हैं। आप मेडिटेशन सीखेगा भी जरूर। इन सेशंस के बाद आप सबके लिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स भी होने वाला है, उसको सीखेगा जरूर। उसमें हम क्या सीखते हैं, अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। ये एनर्जी क्रिएट होती है, ये इम्प्रेशन रिकॉर्ड होता है, फिर ये एनर्जी रेडिएट होती है और वही सारा दिन में मैनिफेस्ट हो जाता है। मेडिटेशन में हम परमात्मा, सुप्रीम पावर जो दाता है, सर्व शक्तियों का दाता है, कल्याणकारी है, उस सर्व शक्तिवान से हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसको याद करते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं कि उसकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भर रहे हैं। चलिए एक क्षण के लिए अभी वो सीन को विजुअलाइज करते हैं। अपने आप को देखिए, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड द एनर्जी द बीइंग, मैं आत्मा, आई एम अ पावरफुल बीइंग। और फिर विजुअलाइज कीजिए कि आपके सर से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा ऊपर देखिएगा, अनदर पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा सर्वशक्तिवान शांति का सागर, उसकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा पर भर रही हैं। विजुअलाइज कीजिए परमात्मा से शक्तियों की किरणें आत्मा पर आ रही हैं। वाइब्रेशंस फ्रॉम द सुप्रीम पावर टू मी द पावरफुल बीइंग। इसको विजुअलाइज कीजिए, शक्तियां वहां से आ रही हैं मुझे आत्मा पर पड़ रही हैं। लाइक अ रेज ऑफ द लाइट, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, वैसे परमात्मा की शक्ति की किरणें यहां पड़ रही हैं। फिर विजुअलाइज कीजिए कि वो शक्ति की किरणें मेरे चारों तरफ एक डिवाइन एनर्जी सर्कल बना रही हैं। आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पावर्स। अपने आप को एक हाई वाइब्रेशनल डिवाइन एनर्जी सर्कल में देखिए, व्हाइट लाइट का सर्कल मेरे चारों तरफ है। मैं परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित हूं। आई एम प्रोटेक्टेड बाय द हाईएस्ट वाइब्रेशन। कोई भी लोअर वाइब्रेशन इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते अब। आई एम प्रोटेक्टेड बाय द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो ये है खुद को विजुअलाइज करना, खुद को याद रखना कि मैं कौन हूं, एंड फिर परमात्मा को याद करना, परमात्मा से बात करें, अपने आज के दिन में जो जो शेड्यूल्ड है वो सब कुछ उसको बता दे। कोई राय लेनी है वो क्वेश्चन भी उसको बता दे, लेकिन आज सारा दिन में क्या क्या करने वाले हैं वो जरूर उसको बताइए और उसको इन्वोक कीजिए। वी हैव टू इन्वोक गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स कि वो हर चीज में हमारे साथ रहेगा, आज हर केस में हमारे साथ रहेगा, हर पेशेंट के इलाज में हमारे साथ रहेगा। आप सब बहुत स्किल्ड हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। आपकी परख, आपका डायग्नोसिस हमेशा राइट होता है। क्योंकि ये तो आपका व्यक्तित्व बन चुका है, ये आपके अनुभव है, लेकिन फिर भी हर पेशेंट अलग होता है। शरीर की बीमारी एक जैसी हो सकती है, लेकिन मन और संस्कार हर एक के अलग होते हैं। तो इसलिए सबका इलाज करने के लिए और सबके मन को सुकून देने के लिए वो ईश्वरीय शक्ति को अपने पास इन्वोक कीजिए कि आप मेरे साथ रहेंगे, आज मुझे इतने लोगों से मिलना है, आज मुझे ये सर्जरी करनी है, वो आपके बच्चे हैं जो आए हैं, सारे परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो वो आपके बच्चे हैं जो आए हैं, ये मेरा भाग्य है जो आप मुझे यूज कर रहे हैं इनको सेहत और सुख देने के लिए, लेकिन आप मुझे गाइड करेंगे, आप मुझे यूज करेंगे, मैं सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट हूं और आप मुझे यूज करके उनको संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण सुख देंगे, मैं आपका निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूं। तो परमात्मा से बात कीजिए, चाहे वो आपके जो केसेस हैं आज जिन जिनका इलाज करना है उसके बारे में, चाहे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, चाहे परिवार के बारे में, उससे बात कीजिए। तो मेडिटेशन मीन्स अ वेरी वेरी प्योर डिवाइन ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद द सेल्फ, अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ना, अपने मन को समझना, अपने सोचने के तरीके को समझना और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शक्ति को बढ़ाना और उसके लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना और ईश्वर की वो शक्ति और गुणों को, परमात्मा के ज्ञान को और परमात्मा के साथ को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। तो कम से कम 15 मिनट 20 मिनट हमें ये सुबह मेडिटेशन जरूर जरूर करना चाहिए। फिर कम से कम 20-25 मिनट द राइट डाइट फॉर द माइंड, ये बहुत जरूरी है आपके लिए भी और आप जिनको मिलते हैं सारा दिन उनको भी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि आजकल हम दुनिया और दुनिया की बातों से बहुत कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। इट्स लाइक हम जंक फूड बहुत खा रहे हैं। आजकल हमें बहुत खबरें मिलती रहती हैं, यहाँ से, इधर से, उधर से, दुनिया की खबरें, देश की खबरें, आस पड़ोस की खबरें, हॉस्पिटल में जो हो रहा है उसकी खबरें, खबरें, इन्फॉर्मेशन, 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 लेकिन इतनी सारी खबरें, इतना सारा कॉन्टेंट, इसकी भी एक वाइब्रेशन है। अगर वो खबरों में भी टेंशन है, गुस्सा है, क्रिटिसिज्म है, रिडिक्यूल है, मजाक है, ये सब वाइब्रेशंस जो कंटेंट की वाइब्रेशंस होंगी, इनका भी हमारे ऊपर असर पड़ेगा। तो इतनी सारी खबरों के बीच कम से कम थोड़े समय के लिए सुबह अच्छी खुराक भी खा लेनी चाहिए, इमोशनल डाइट फॉर गुड इमोशनल हेल्थ। कम से कम 20 मिनट्स सुबह हम प्योर डिवाइन कंटेंट, हाई वाइब्रेशनल कंटेंट, व्हिच मींस कंटेंट जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा के दिए हुए महावाक्य जो सर्व शक्तियों से भरे हुए हैं, जिससे हमारे अंदर कंपैशन, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, इसका संस्कार स्वतः ही बनता जाएगा, क्योंकि वो हमारी इमोशनल हेल्थ वैसे बन जाएगी क्योंकि हमने वो डाइट वैसी भरी है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर तरीका है संस्कार परिवर्तन का। 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान, योग, ये 2 चीजें हम सुबह कर लेते हैं। जैसे हमने मेडिटेशन किया पहले 15 मिनट, फिर हम ज्ञान 15-20 मिनट अपने अंदर भरेंगे, तो मतलब डाइट भी ले ली और एक्सरसाइज भी कर लिया फॉर द सोल। ये दोनों चीजें हैं, ज्ञान और योग। कई बार हम सोचते नहीं बस मैं मेडिटेशन कर लो तो मुझे डाइट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और कोई सोचते हैं कि मैंने ज्ञान तो सुन लिया, मुझे मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। हमें दोनों चीजों की जरूरत है। ज्ञान हमें सोचने का तरीका सिखाती है और मेडिटेशन हमें शक्ति देती है ताकि जो हमने समझा, जो हमने यहाँ भरा, वो उसको हम प्रैक्टिकल में सारा दिन लेकर आएंगे। द पावर टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी नो इज राइट, जो हमें मालूम है, हमें मालूम है गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें मालूम है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें मालूम है हमें बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए, हमें मालूम है बहुत कुछ। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या करें, हो गया, आ गया। वो शक्ति की कमी है। तो वो शक्ति हमें मेडिटेशन से मिलती है। तो ज्ञान और योग दो सब्जेक्ट्स, तीसरा सब्जेक्ट जो सारा दिन में हमने भरा है सुबह, उसको हम सारा दिन में इम्प्लीमेंट करेंगे कि सुबह हमने विजुअलाइज किया, सुबह हमने स्टडी किया, फिर हम थोड़ा सा अटेंशन सारा दिन में रखेंगे कि हम उस तरह से प्रैक्टिकल में व्यवहार करेंगे, उस तरह से एक दूसरे से बात करेंगे, उस तरह से सोचना शुरू करेंगे। तो धारणा, तो ये धारणा पर सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखना होता है, बाकी जो सुबह भरा था और विजुअलाइज किया था वो आना ही है प्रैक्टिकल में, लेकिन थोड़ा अटेंशन। तो धारणा और सेवा, सेवा मतलब मुझसे वो वाइब्रेशन सबको रेडिएट हो, वो सेवा तो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। सो ज्ञान, योग, धारणा एंड सेवा, ये चार पिलर्स हैं, ये चार पिलर्स हैं ऑन विच स्पिरिचुअलिटी स्टैंड्स। कि ज्ञान भरे, स्टडी करें, योग मेडिटेशन करें, धारणा प्रैक्टिकल में उसको लेकर आए, और सेवा कि हमारे से सबको वो मिले, वो तो अपने आप होता रहेगा। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, जहां स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे संस्कार और हमारे कर्म, वो हमारी प्रायोरिटी रहे। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स कि हमारे संस्कार और हमारे कर्म हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशन के रहे, सब कुछ करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, हमेशा ये प्रायोरिटी पे रहे कि मेरा कर्म श्रेष्ठ है, एक्यूरेट है, इसमें कोई और मिलावट तो नहीं हो रही है, मेरी अपनी ईर्ष्या, मेरी अपनी इच्छाएं, ये चीजें मिलावट तो नहीं कर रही, मेरा अपना गुस्सा, मेरा अपना ईगो, ये मिलावट तो नहीं कर रहा मेरे कर्म में। सो माई कर्म हैज टू बी द हाईएस्ट वाइब्रेशन, एलिवेटेड कर्म, एलिवेटेड कर्म। तो संस्कार और कर्म हमारी प्रायोरिटी रहे हमेशा, क्योंकि यही यहाँ पर रिकॉर्ड होता जा रहा है, यही हमारी हीलिंग करता है, और जो हमारी हीलिंग करता है वो वाइब्रेशन सबकी हीलिंग करता है, हमारे शरीर की हीलिंग करता है, दूसरों की हीलिंग करता है, प्रकृति की हीलिंग करता है, सृष्टि की हीलिंग करता है, जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल प्रिंसिपल्स, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और एक छोटी सी चीज, ताकि ये चारों पिलर्स जो हमारे हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, वो है जीवन में प्योरिटी, सात्विकता, सात्विकता, शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अन्न का असर मन पर होता है। ये भी चार लेयर्स होती है, धन, अन्न, मन और तन। कि हमारा धन दुआओं के साथ आता है, आपको तो आपके धन के साथ बहुत दुआएं मिलती हैं, क्योंकि दूसरों को सुख दिया है ना, उनका भाग्य बदला है, तो आपको बहुत दुआएं मिलती हैं। तो धन दुआओं के साथ आए, अन्न सात्विक हो, मन का रोज सुबह एनर्जाइज करने का ध्यान रखें, और शरीर का तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जब धन, अन्न और मन सात्विक होता है तो शरीर स्वस्थ रहना सहज हो जाता है। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद द सात्विक लाइफस्टाइल, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आज दिन तक मेडिकल साइंस ने, डॉक्टर्स ने, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई में लिखा गया है एंड आपके पास उसका भरपूर साइंटिफिक एविडेंस है, आप ऐसे ही नहीं कह रहे सिर्फ पढ़कर, आपको पता है कि वो जो एनिमल प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को जरूरी है। ये सच है, दिस इज रियल, एब्सोल्युटली रियल है ये, और इसीलिए तो आपने सबको बताया, या आप में से मेजोरिटी ने कहें सबको बताया कि ये हेल्दी होता है। लेकिन अब हम उसको दो लेवल ऑफ हेल्थ पे चेक कर लेते हैं, एक फिजिकली हेल्दी होता है, और दूसरा क्या वो इमोशनली हेल्दी होता है। क्या वो इमोशनली हेल्दी होता है, क्योंकि हमें हीलिंग तो दोनों की करनी है ना, मन और शरीर की भी हीलिंग करनी है। तो जो प्रोटीन्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमें उससे मिलते हैं, उस एनिमल प्रोडक्ट से, वो तो शायद और भी बहुत सारी चीजों से मिल जाते हैं। तो आप हमें वो सिखाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ से वो प्रोडक्ट्स, वेजिटेरियन जो है, जिनसे हमें वो सारे प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं, और आप सिखाते भी हैं, हम सबको आपने ही सिखाया है। लेकिन साथ साथ अगर आप ये भी बताना शुरू करें, और वो आप तब बताएंगे जब वो आपका अपना अनुभव होगा कि ये जो एनिमल प्रोडक्ट है ये किसी के दर्द से आया है हमारे पास, वो प्रोटीन्स तो है लेकिन उसमें किसी का दर्द है, उसमें किसी का दुख है, उसमें किसी की हेल्पलेसनेस है, उसमें किसी का डर है। एनिमल्स के भी वही फीलिंग्स होती हैं, वही थॉट्स होते हैं, उनके भी शरीर में हॉर्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उस इमोशन से। तो क्या वो चीज हमारे लिए इमोशनली हेल्दी हो सकती है? और अगर वो हमारे लिए इमोशनली हेल्दी नहीं है तो क्या वो हमारे लिए फिजिकली भी सही मायने में हेल्दी हो सकती है? ये हमें चेक करना होगा। वी नीड टू थिंक अबाउट इट, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी नीड टू एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करें सबसे पहले अपने लिए, कि जैसा अन्न वैसा मन। तो वो जो अन्न हम खाएं, हीलर्स हैं, सबकी सेवा करने वाले हैं, हाईएस्ट वाइब्रेशन सबको देने वाले हैं, तो वो जो अन्न आप स्वीकार करें वो प्रसाद की वाइब्रेशन का होना चाहिए, परमात्मा की याद में बना हुआ खाना होना चाहिए, उसके अंदर हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी होनी चाहिए। भोजन वो नहीं हो सकता जिसमें किसी का दुख, दर्द, किसी की हिंसा, किसी की मृत्यु हो। वो वाइब्रेशंस हेल्दी कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? तो लेट्स एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, और रिजल्ट जब मिलेंगे, एक्सपीरियंस जब मिलेगा, वो एक्सपीरियंस से सबके साथ शेयर कर सकते हैं, सबको ये ऑप्शन तो दे सकते हैं कि हाँ इसमें प्रोटीन है लेकिन इसमें ये वाइब्रेशन भी है। हमें तो कंप्लीट नॉलेज देनी है ना सबको। आजकल आप सबको कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देनी है, तो ये भी तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को मिलनी चाहिए कि इसमें ये न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन इसमें ये वाइब्रेशंस हैं, और कुछ और चीजें हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन जिसके वाइब्रेशंस ठीक है, और आप उसको परमात्मा की याद में बनाकर और उसके वाइब्रेशंस को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाइब्रेशंस के बारे में बताना, ये भी तो साइंस है, ये भी तो साइंटिफिक है कि एनर्जी क्या है उस चीज की, ये भी तो हमें बताना होगा ना सबको। लेकिन वो हम तब बताएंगे जब हम खुद उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम खुद उसको एक्सपीरियंस करेंगे। सो एज हीलर्स हम कोई भी चीज ऐसी ना खाएं, ना पिए, ना कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस ऐसा यूज करें जो हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आता है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी हीलिंग करना और अपनी वाइब्रेशन से सबकी हीलिंग करना। तो इस वीक में जो राजयोग कोर्स स्टार्ट होने वाला है आप जरूर करिएगा, घर बैठे कर सकते हैं आजकल ऑनलाइन, और फिर उसके बाद तो जब सेंटर खुलेंगे तो आप सेंटर पर आइएगा, मेडिटेशन सीखिएगा, वो स्पिरिचुअल स्टडी, वो खुराक परमात्मा जो सिखा रहे हैं, परमात्मा सर्वशक्तिवान जो ज्ञान दे रहा है, उससे अपनी सोच, नजरिया, भावनाएं, शब्द और व्यवहार श्रेष्ठ बनाएंगे, और खुद का ध्यान रखते हुए फिर सबकी सेवा करेंगे। हीलिंग द हीलर फर्स्ट एंड देन हीलिंग एवरीवन हु कम्स इन योर एनर्जी फील्ड। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 8619937031। Awakening.